तो सूरत काहफ इसकी 1 से 74 आयात हैं। इधर हम जो पढ़ेंगे अगले पारे में फिर अगली आएंगी। इसके बारे में चंद बातें नोट कीजिए। पहली बात है कि मुस्तदरक हाकिम की रिवायत से आप पता चलता है कि जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके 2 जुमों के दरमियान में रोशनी हो जाती है। कई रिवायत में गुनाहों की माफ़ी आती है, फिर इसी तरह फितना दज्जाल से महफूज रहने की बातें, इस पर बहुत सारी रिवायात हैं। गोया कि एक बड़ी अहम सूरत हम पढ़ने वाले हैं। पिछली सूरत में हिजरत की बात थी, तो इस सूरत में असहाबे कहफ की हिजरत का तذکرہ मिलेगा। यदि इंशाल्लाह अगर मौका हुआ तो मैं इसको रिलेट करवाऊंगी आपको आगे जाकर। अभी देखते हैं आयतों के साथ इनको। तो आयत 1 से 3 में कुरान पाक की अजमत और उसका पैगाम है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अब्दिहिल किताब वलम यजल्लहू इवजा। असल ये आयत समझ आ गई ना, तो बाकी सारा मामला आसान होगा। देखिए तारीफ उस ज़ात की, पीछे क्या था, सुबहान अल्लज़ी असरा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी नबी के लिए भी अब्दी ही था, यहाँ भी अब्दी हिल किताब है। वहाँ मेराज का सफ़र था, यहाँ कुरान का नज़ूल है। क्या पता चला कि सफ़रे मेराज को तुम बहुत अहम समझो, बहुत बड़ा समझो, लेकिन तुम इस कुरान को छोटा समझते हो। क़य्यिमन लियुन्ज़िरश, ये सिफत है कुरान की, सीधा कर देती है ये। आपके बिगड़े हुओं को कुरान सीधा करेगा, हिदायत से भिदके हुओं को कुरान सीधा करेगा। और कुरान का मेन मैसेज क्या है, लियुन्ज़िर बासन शदीदम मिन लदुन्हु, आने वाली एक बहुत बड़ी तकलीफ़देह चीज़, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें आती हैं दुनिया में भी पकड़ की सूरत में आखरत की भी, उसके लिए ये सीधा करती है, जहन्नम से डराती है। वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरियाँ भी देती है। यानी कुरान एक ही वक्त में हॉट भी है एंड कोल्ड भी है, मीठा भी है तो कड़वा भी है। असल ये कि आपकी अपनी ज़ुबान का क्या टेस्ट है। फिर आयत 4 से 5 में एक गुमराह को नकीदे की ज़ोरदार नफ़ी है, और वो अकीदा क्या था, क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह की ज़ात के साथ कुछ गलत अकायद बना दिए, जैसे अल्लाह के बेटे, अल्लाह की बेटियाँ, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की बीवी, जिन्नात के साथ अल्लाह का नसब। तो ये आयत आपको बताती है कि ना तो अल्लाह के बेटे हैं, ये बग़ैर इल्म के बातें हैं जो मुँह से निकालते हैं, और ये कुछ नहीं यकूलू ना इल्ला कज़िबा। फिर अगली आयत में नफ्स सल्लम की तलब और तड़प है, फ़लाअल्लक़ बाख़िउ नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफ़ा। शायद आप तो अपने आप को हलाक ही कर लेंगे इस गम में घुल घुल के कि ये इस बात पर ईमान क्यों नहीं लाते। देखिए एक लफ्ज़ होता है ज़िबा, जब ज़बा कहते हैं, और एक बखा, फ़र्क क्या है। बखा में थोड़ा 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 कटता जाता है बंदा और चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी तड़प है, जलन है। क्या आपके मेरे अंदर ये बखा है? अब देखिए कि दीन का काम हो ही नहीं सकता बखा के बग़ैर। जिस बंदे के दिल में इंसानों की मोहब्बत होगी, उनसे प्यार होगा, वो ज़रूर इसके लिए वक्त भी लगाएगा और माल भी लगाएगा, और अल्लाह हमें भी ये तड़प अता कर दे। आयत 7 to 8 में दुनिया और इसकी ज़िंदगी की हकीकत है, इन्ना जालना माल अर्दी ज़ीना, बेशक हमने इस ज़मीन पर जो कुछ बनाया है वो दुनिया की जीनत है। क्यों, ली नबलुवा हम, ताकि हम उनको आजमाएं, अय्युहुम अहसनु अमला, कौन अच्छे अमल करता है। अच्छा यहाँ ये नहीं आया अय्युहुम अक्सरु अमला, किसने ज़्यादा काम किए। आज हमारा गोल क्या है, कितने किए, कितने सपारे पढ़े, कितनी तरावियाँ पढ़ी, कितने उम्रे किए, कितने सदक़े दिए, नहीं अहसन कीजिए, थोड़ा भी करें अच्छा कीजिए, क्वालिटी का कीजिए, ताकि आपके बाद भी वो काम जारी रहे। और एक दिन आएगा, वइन्ना लजाइलू नमा अलैहि सईदन जुरुजा, एक दिन ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। जुरुस बंजर, जैसे बड़ी सी बिल्डिंग को बिल्डोज कर दिया जाए। हरम के इर्द गिर्द आप देखते हैं बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चीज़ों को, पत्थरों को जलाकर प्लेन कर दिया जाता है, तो एक दिन ये दुनिया बिल्कुल प्लेन होगी। इसके बाद ज़रा सा आप सूरत कहफ को समझिए, इसमें 4 मुख्तलिफ फितनों की बात आ रही है। पहला फितना ईमान का फितना है, इसके लिए असहाबे कहफ का किस्सा है, आयत नंबर 9 से 20 तक। पीछे हमने हिजरत की बात देखी है सूरह बनी इसराइल में, यहाँ प्रैक्टिकल हिजरत की बात है। और असहाबे कहफ कौन थे, ये हज़रत ईसा के दौर के इर्द गिर्द के लोग थे, असल में ये वो बच्चे थे कि जिनको अल्लाह ने चुन लिया था, यूथ थी, यंगस्टर्स थे। माँ बाप जिस वक़्त मसलियत का शिकार हो गए, इन्होंने अपने आप को फितनों में डालने की बजाय कुछ किया, मकसद एक था ना, तो सब मिल गए। कोई किसी जगह से आया, कोई कहीं से आया, ऐसे ही जैसे अल्लाह के नबी के पास सहाबा जो आए वो कहीं कहीं से आया, सलमान फारस से आ गए, अबू हुरैरा कबीला दौस से आ गए, और आपके साथ आपके हमसाए अबू लहब को ईमान नहीं मिला। तो यहाँ से बात समझिए, जब आपके अंदर सच्चाई होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको आप जैसे सच्चे लोग दे देगा। लोग हमेशा अपने अपने माइंड के लोगों के साथ मिलके चलते हैं। दूसरी बात इसमें क्या पता चली, अल्लाह की जो इन पर नेमतें हुई, गार में थे और अल्लाह ने उस गार को इंक्यूबेटर बना दिया, करवटें पलटी गईं ताकि बेड सोल ना हो जाए, आंखें खुली रखी गईं ताकि रोब पैदा हो, एक कुत्ता गार के बाहर खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन अंदर ना आए। इससे क्या पता चलता है, इवन सूरज को ज़रा सा का हटके चलना, कहीं सारा दिन धूप में पड़ने की वजह से जिस्म ना जले, तो लिखिए खाली हाथ घर से निकले थे, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की। अल्लाह ने कायनात को इनका मुआविन बना दिया। अल्लाह के नबी को भी बताया जा रहा है कि अगर हिजरत का मौका है तो घबराइए नहीं, आपको भी सिर्फ 3 ही दिन गारे सौर में रहना पड़ेगा, उसके बाद तो तलव बदरु अलैना वाली पुकारें सुननी पड़ेंगी। तो यहाँ हिजरत और ईमान का बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक है। एक तो मैं यहाँ आपको आज ही दावत दूँ कि सूरत कहफ की तफसीर अलग से सुनिए। किसी भी कुरान के सेट को खोल लीजिए, आप ऐप के ऊपर जाकर लफ्ज़ कुरान खोलें तो तफसीर के आपको मुख्तलिफ सेट्स मिलेंगे, यूट्यूब पे भी हैं, फिर जहाँ भी मिलें, या आप किसी का भी सुनिए, मैं तो आपको वो बता सकती हूँ जो मुझे पता है, लेकिन सूरत कहफ अलग से भी की हुई हमने, और ये इतनी खूबसूरत सूरत है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। तो लिहाजा असहाबे कहफ के ज़रिए ईमान के फितने की बात है। इसी में आयत 21 में एक मैसेज आ जाता है कि कब्रों पे मस्जिद बनाना मना है। जब वो असहाबे कहफ दोबारा ज़िंदा हुए फिर मरे, तो कुछ लोगों ने उनकी कब्र पे मज़ार बनाना चाहा, अल्लाह ताला ने इससे रोक दिया। फिर इसी तरह से आयत 22 से एक अजीब सी बात जो उन लोगों ने की, वो कितने थे, अच्छा इतने थे, अच्छा इतने थे, ये थे वो थे, अल्लाह ताला ने इन सब से हटाकर मकसद पे नज़र डाल दी। और आपके लिए मौजू क्या है कि अहमियत तादाद की नहीं, हासिल होने वाले असबाक की है। आपने सीखा कि आपने 1 घंटा लगाया, 2 लगाए, 5 लगाए, आप 5 साल पढ़ते रहे, 10 साल पढ़ते रहे, आपने उसमें से सीखा क्या। फिर आयत 23-24 में इंशाल्लाह कहने का हुक्म है और बताया कि जिस काम पे आप इंशाल्लाह कह देते हैं, वहाँ अल्लाह की मदद आ जाती है। आपको भी मुझे इंशाल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए। आयत 25-26 में गैब की बातें अल्लाह के इल्म में हैं, इस बात का यकीन रखिए। वला भी सुफिल काफी सला समियातिन सिनीन वज़दादु तिस्सा, 309 साल तक वो गार में पड़े रहे। कोई कहता है वो इतना रहे, कोई इतना रहे, क्या हुए, कहा इसको अल्लाह पे डाल दो, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमारे दीन का एक मिजाज समझिए, गैर ज़रूरी बहसें नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जिस पे आपके अमल का कोई ताल्लुक नहीं। तो असहाबे कहफ का किस्सा आयत 1-26 तक अगर आप देखें तो ये ईमान का फितना था। आपके लिए मेरे में लिए इसमें अमल की बात क्या है, नंबर 1 नेक लोगों की सोहबत अपनाइए, चूँकि ये एक एक करके इकट्ठे हुए, जब जमा हुए तो अल्लाह ने इनको एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म दे दिया। दूसरी बात है कि आखिरत का हसूल ही मकसद हो, नेकी के नाम पे जो काम भी करें उसमें आप दुनिया को बीच में ना लाइए, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। और दुनिया सिर्फ पैसों में नहीं होती, शोहरत, इज्जत, नाम, रैंक, बड़े बनना, आज़ादी, मैं हूँ ऐसी, मैं हूँ वैसी, इन चीज़ों से बचिए। फिर इसके बाद आगे आए 27-28 में सब्र आजमा हालात में एक दाईये दीन के लिए क्या हिदायत है। अल्लाह के नबी को बहुत आजमाया जा रहा था, तो अल्लाह ने या नबी सल्लम को बता दिया, वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, इस किताब के अलावा कोई बात ना कीजिए, यानी आप इन सारी तकलीफ़ों पे जो आपको दी जा रही हैं, वस्बिर नफ्सा कमाल लजीन यदून रब्बहुम, अल्लाह वाले चाहे गरीब थे, अब्दुल्ला बिन मसूद थे, बिलाल थे, जिनके कपड़ों से हो सकता है बू आती हो बकरियों को चराने की वजह से, लेकिन आप उन बड़े बड़े सरदारों और बड़े बड़े खुशबुओं में लिपटे हुए लोगों की बजाय ऐसे गरीब लोगों में उठिए बैठिए जिनके दिल में अल्लाह की तड़प है। अब आपके अच्छा सिर्फ गरीबों में ही अल्लाह की मोहब्बत होती है तो गलत है। आज बड़े करोड़ अरब पति लोग आपको अल्लाह से मोहब्बत में कई गरीबों और जाहिलों से ऊपर दिखेंगे। तो असल बात यह है कि लोग क्या है उसको छोड़ दीजिए, ये देखिए कि उनके दिलों में क्या है। फिर आगे जाते हैं तो आयत 29 से 30 में, बयान करो पूरा हक, कोई माने या ना माने। कई लोग ट्विस्ट कर जाते हैं जुबान को, अच्छा ये ना करो फिर लोग माइंड कर जाएंगे, ये हुक्म है वो नहीं। तो इन आयतों का जो मेन थीम है, हालांकि इसमें जहन्नम से मुतल्लिक बड़ी सख्त आयात है, लेकिन आपके मेरे लिए इसमें जो पैगाम है वो क्या है, वकुलिल हक को मेरे रब्बी को, कह दीजिए हक तो मेरे रब की तरफ से, आप दिल चाहते तो मान लीजिए, दिल नहीं चाहता तो ना माने। लेकिन नहीं मानोगे तो हमने जालिमों के लिए एक ऐसी आग तैयार की कि जब उसकी लपटें उनको पकड़ लेंगी और वो पानी मांगेंगे। यानी ये तो वो आयते हैं कि जिनको पढ़कर एक ही दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। उसके बाद आयत नंबर 31 में जन्नत की खूबसूरती भी है, ये भी बड़ा प्यारा मिजाज आप कुरान का देख रहे हैं। जहाँ जहन्नुम की बातें सुनकर दिल पे ज़रा सा बोझ आने लगता है तो आगे ही जन्नत की आयतें, और अल्लाह आपको सबको इन सारी नेमतों से फैजयाब करे जिनका तذकरा है। हमेशगी की जन्नतें भी हैं, जेवरात, और ये तो आप खवातीन वाली चीज़ें हैं, मर्दों को तो इससे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन औरतों को असाविरा मिन जहब, असाविरा अस्वरत उनसे कंगन, हाँ जड़ाऊ चूड़ियाँ, शादी वाली चूड़ियाँ याद कीजिए अपनी, हाँ जहब की होंगी सोने की, और कपड़े भी सब्स रेशम के, और जो अस्तर लगा होगा वो कोई सस्ते कपड़े का नहीं होगा, वो मोटे रेशम का होगा। और अललराई की तख्तों पे बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, रोब डाल रहे हैं, कोई किचन में जाकर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। तो क्या ये जन्नत नहीं लेनी, अल्लाह मुझे आपको अता करे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पहला किस्सा पूरा हुआ जिसका ताल्लुक ईमान से था। अब दूसरा फितनाए माल है, बाग वालों का किस्सा, ये आयत 32 से 45 तक चलता है, जिसमें अल्लाह ने दो लोगों को सिंबलाइज करके उनमें से एक को नेमतों वाला लेकिन अल्लाह से दूर, और दूसरा जिसके पास बहुत थोड़ा था लेकिन अल्लाह से करीब करके आपको मुझे जो मॉरल्स एंड लेसन्स दिए वो क्या है कि जो अल्लाह ने दुनिया में नेमते दी है ना उनको हासिल करो और फिर अल्लाह का कुर्ब पाओ, और अगर अल्लाह ने कम दिया है तो सब्र करो और शुक्र करो। और इंशाल्लाह कहने की बात पीछे थी तो यहाँ माशाल्लाह कहने की बात है, ये भी नोट कर लें, किस्सों में से किस्सा निकल रहा है। तो क्या पता चला कि बाग वाला जो किस्सा है 32 से 45, ये माल का फितना है। इसमें आपको मुझे क्या पता चला, नंबर एक ज़िंदगी की हकीकत मालूम हुई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें, सिखाया क्या कि आखिरत पे नज़र हो। इसके लिए अब आगे आयत देखेंगे हम 46 से 47, माल और औलाद दुनिया की जीनत है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, और इस पे अलग से लेक्चर्स भी मौजूद हैं। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबम व खैरुन अमला। यानी माल भी अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह मुबारक करे, औलाद भी अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह उनके दीन ईमान की हिफाजत करे, इन दोनों चीज़ों को बाकियात सालिहात कैसे बनाना है, ये है खूबसूरत सा पैगाम इस पे। और उसके बाद आयत 48 में, अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, वो उरीद वाला रब्बी का सफ़ा, और अपने रब के सामने सफ़ दर सफ़ पेश किए जाएंगे, और क्या कहा जाएगा, लक़ा जेतुमूना, आ गए हो हमारे पास, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे तुम्हें पहले पैदा किया था। बलजम तुम तो यही सोचते रह गए कि अल्लाह ने तो कोई वादे की जगह ही नहीं रखी। तो आज दुनिया में हैं, लोगों में घिरे हुए हैं, वहाँ जाएंगे तो अकेले होंगे। तो क्या हमें अकेले होने से घबराहट होनी चाहिए, नहीं, बल्कि अकेले में अल्लाह से बातें करना सीखे। फिर आयत 49, नामे आमाल ने सबको घेर रखा है, वबुदियल किताब फतरुल मुजरिमीन, और किताब रख दी जाएगी और मुजरिमों को तुम देख लोगे, मुशफिकीन मिम्मा फी, इसको हाईलाइट कीजिएगा। क़यामत के दिन जिस चीज़ से एक मुजरिम सबसे ज़्यादा डर रहा होगा वो क्या है, उसके अपने इंदराजात, उसके एंट्रीस। दुनिया में भी जब किसी के खिलाफ पर्चा कटता है या उसके खिलाफ जाकर कोई थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस रिपोर्ट के लिखे लफ्ज़ों से बंदा डरता है। इसलिए सोच कर अपने अमाल को मुरतब कीजिए। पिछली सूरत में क्या था, वकुल्ला इंसान है नल्जाम ना हो तो आई रहू। और यहाँ क्या है कि अपने नामे अमाल में जो चीज़ें हैं उससे डरो, और वो कहेंगे या वही लतना व यकूलू न या वही लतना माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा। ये है थॉट प्रवोकिंग आयते। आज बोलिए तो सोच के बोलिए, सुनिए तो सुन सोच के सुनिए। तो आयत 49 का टॉपिक है नामे अमाल ने सबको घेर रखा है, तो हम सबको शऊर के साथ जीना है। इसके बाद आयत नंबर 50 से 53 में शैतान की पैरवी करने वालों का बुरा अंजाम। और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बार फिर आदम और इबलीस का किस्सा है। 9 दफ़ा ये किस्सा हमें मिलता है कमोबेश। क्या पता चला? अपने दुश्मन को पहचानो। फिर इसके बाद आयत 54 से 56 में इंसानों की अक्सरियत हठ धर्म और झगड़ालू है। यानी जहाँ उनके सामने आप हक बात पेश करेंगे वो एकदम झगड़ना शुरू कर देंगे। और आयत 57 से 59 सबसे बड़ा जालिम कौन है? आप भी सोचिए कौन है। व मन असलम मिम्मन कौन जुक्की रबी आयाति रबी। इसको हाईलाइट करिएगा, जिसको अल्लाह की आयतों से नसीहत की जाए फारदानहा एराज करे। आज आपके इस पूरी चॉइस है, आप इस किताब को पढ़ें ना पढ़ें, सुने ना सुने, बंद कर दें, छोड़ दें, उठकर चले जाएं। लेकिन कल क़यामत के दिन जो नतायज होंगे फिर आप उसको बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये दूसरा किस्सा पूरा हुआ, और कुछ पार्ट किस्सा मूसा और खिजर का इस बारे में जिसमें इल्म के फितने की बात है, और इसके ऊपर अगले पारे में भी कंटिन्यूएशन होगी। चूँकि पारे का शुरू होगा तो वहाँ इंशाल्लाह इस किस्से को मैं चंद जुमलों में समअप करूँगी। अभी बस इससे एक बात नोट कीजिएगा कि इल्म के लिए सफ़र की अहमियत है। हज़रत मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी जिन पे तौरात भी आ चुकी है, वो भी इल्म के लिए निकलते हैं, और इल्म के लिए निकलना जन्नत के रास्तों को आसान कर देता है। अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई थी कि जो आदमी इल्म तलाश करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। तो मैं आप सबको भी दुआ दूंगी कि आपके इल्म की यह तलब तड़प आपके लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर दे। इस किस्से की बात से हम इंशाल्लाह अगला पारा शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।